الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر حسان۔ آئیے سر حسان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اب ہم اپنی اسمبلی میں حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں اور سر حسان کو بلاتے ہیں جو آپ کا اسماء النبی بھی یاد کروائیں گے۔ آئیے سر حسان۔
حدیث پاک لا تدابرو یعنی پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو۔ پیارے بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے سارے اسماء النبی یاد کر لیے تھے، آج ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ محمد احمد حامد محمود قاسم محمد احمد حامد محمود قاسم محمد احمد حامد محمود قاسم۔
پیارے بچوں سر حسان نے آپ کو اسماء النبی یاد کروایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں اپنے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سالم۔ آئیے سر سالم کلام پڑھیے۔
ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا جیسے ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میری میں से सिवा चाहिए आप जैसे है वैसी अता चाहिए।
सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। आई प्यारे बच्चों, अब हम इल्म में इजाफे की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह।
रब्बी
ज़िदनी
इल्मा।
रब्बी
ज़िदनी
इल्मा।
रब्बी
ज़िदनी
इल्मा।
रब्बी
ज़िदनी
इल्मा।
सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब हमारी असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपनी क्लासेस में चले जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कैसे हैं आप सब?
अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, ये बताइए कि हमारा कौन सा यूनिट है?
कुरान।
जी, ये कुरान यूनिट है।
तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां।
तो आप सब तैयार हैं कुरान यूनिट के लिए? बच्चों, आज हम कुरान पाक में जिक्र होने वाले परिंदों के बारे में बात करेंगे। तो क्या किसी को मालूम है कि कुरान पाक में कितने परिंदों के नाम आए हैं?
सर, शायद दो होंगे।
नहीं सर, चार होंगे।
नहीं बच्चों, सही जवाब है तीन।
सर, वो कौन से परिंदे हैं?
बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान से सुने। पहला परिंदा है हुदहुद। इसका जिक्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकये में मिलता है। दूसरा परिंदा है अबाबील। असहाबुल फील के वाकये में इसका जिक्र है। और तीसरा परिंदा है कौवा। इसका जिक्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के वाकये में है। अब सब मिलकर मेरे साथ नाम दोहराएं ताकि अच्छी तरह हमें याद हो जाए। पहला परिंदा है हुदहुद, दूसरा परिंदा है अबाबील, और तीसरा परिंदा है कौवा। पहला परिंदा है हुदहुद, दूसरा परिंदा है अबाबील, और तीसरा परिंदा है कौवा। जी तो बच्चों, आज का यूनिट हमारा खत्म हुआ। अगले यूनिट में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈینٹس، ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟
تینوں دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تینوں دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔
تو बच्चों, आप सब रेडी हैं अखलाकियात के बारे में पढ़ने के लिए?
जी।
स्टूडेंट्स, आज हम एथिक्स का एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर हम इसे अपनी लाइफ में अपना लें तो हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं?
सर, क्या वाकई आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है?
जी हाँ, आज का टॉपिक ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इस्लाम में भी इसकी बहुत अहमियत है।
सर, वो कौन सा टॉपिक है?
आज हम बात करेंगे सब्र और मेहनत के बारे में। किस किस के बारे में बात करेंगे?
सब्र और मेहनत।
जी हाँ, सब्र और मेहनत वो खूबियाँ हैं जो हमें मुश्किल वक्त में मजबूत बनाती हैं और दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में मदद देती हैं और हमें कामयाबी दिलाती हैं। बच्चों, जब हम सब्र करते हैं तो हम जल्दबाजी से बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं?
जल्दबाजी से।
हाँ, और जब हम मेहनत करते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। मेहनत करने से क्या होते हैं?
कामयाब।
बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फेरोज एक मेहनती तालिब इल्म था, लेकिन वो बहुत जल्द मायूस हो जाता था। क्या हो जाता था?
मायूस।
अगर किसी सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आ जाते तो वो पढ़ाई छोड़ने का सोचने लगता था। एक दिन इम्तिहान में उसके मैथ के नंबर बहुत कम आए। किसके नंबर कम आए? फेरोज को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मुझे रियाजी नहीं आती, मैं कभी अच्छे नंबर नहीं ले सकता, मैं तो बस फेल ही हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? लेकिन टीचर ने उसे समझाया, बेटा कभी कभी हमें कामयाबी फौरन नहीं मिलती, हमें सब्र करना होता है, मेहनत जारी रखनी होती है और अपनी गलतियों से सीखना होता है। अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। फेरोज ने हिम्मत नहीं हारी, सब्र किया और मेहनत जारी रखी। क्या किया? और क्या जारी रखी? वो रोजाना रियाजी की प्रैक्टिस करता और अपने टीचर से सवालात पूछता। और पता है फिर क्या हुआ? अगले इम्तिहान में फेरोज ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन से हमने क्या सीखा? मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है बल्कि सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ाई में अगर नंबर कम आए तो मायूस होने के बजाय मेहनत जारी रखनी चाहिए। क्या जारी रखनी चाहिए? तो बच्चों, करेंगे इस बात पे अमल? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले यूनिट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम।
स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा,
स्कूल हो तो ऐसा।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, हमारे यहाँ कौन सा यूनिट शुरू हो चुका है?
तीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ।
आप सब हिस्ट्री के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं? आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहाँ हमने पिछली क्लास में खत्म किया था। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने सुना था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ऊन वाली कमीज देखकर सब्र करने लगे। क्या करने लगे?
सब्र।
आज हम सुनते हैं कि उस जंगल के कुएं में क्या हुआ जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने डाल दिया था। प्यारे बच्चों, एक काफिला यानी लोगों का ग्रुप रास्ता भूलकर उस जंगल में पहुंचा जहां ये कुआं था। ये जगह लोगों से बहुत दूर थी। कुएं का पानी खारा था लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से मीठा हो गया था। क्या हो गया था?
मीठा।
जी, काफिले वाले वहीं रुके और पानी लेने के लिए एक शख्स को कुएं की तरफ भेजा। उस शख्स का नाम मालिक था। क्या नाम था?
मालिक।
और वो मदियन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था?
मदियन।
जब मालिक ने अपना डोल यानी बर्तन कुएं में डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो डोल पकड़ लिया। मालिक ने जब डोल खींचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके साथ बाहर तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ ले आए? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो डोल पकड़ लिया क्योंकि आप कुएं में थे। कहाँ थे?
कुएं में।
जी, मालिक ने जैसे ही आपको देखा तो वो बहुत खुश हुआ और अपने साथियों को बताया कि ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़का है। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के साथ छुपा लिया। प्यारे बच्चों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी उसी जंगल में अपनी बकरियां चरा रहे थे। वो कुएं पर नजर रखे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में नहीं है तो तलाश करते हुए मालिक के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए?
मालिक के।
वो मालिक से कहने लगे कि ये हमारा गुलाम है, यहाँ से भाग कर आया है, ज्यादा काम का नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम इसे सस्ते दामों बेच देते हैं, और हाँ इसे कहीं दूर ले जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश खड़े रहे और आपने कोई बात ना फरमाई। मालिक और उनके साथियों ने आपको उनके भाइयों से खरीद लिया और फिर आपको लेकर मिस्र रवाना हो गए। कहाँ रवाना हो गए? उस जमाने में मिस्र का बादशाह रैयान बिन वलीद था। कौन था?
रैयान बिन वलीद।
उसने हुकूमत के बहुत से काम एक समझदार वजीर को सौंप रखे थे। किसको सौंप रखे थे?
एक समझदार वजीर को,
जिसका नाम कितफीर था। क्या था?
कितफीर।
लोग उसे अजीज़े मिस्र कहते थे। क्या कहते थे?
अजीज़े मिस्र।
यानी वो वजीर आजम था। कौन था?
वजीर आजम।
जी, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में लाया गया तो हर शख्स आपको खरीदना चाहता था। लोग बोली लगाने लगे। आखिरकार आपके वजन के बराबर सोना चांदी मुश्क और रेशम कीमत तय हुई। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 13 या 17 साल के दरमियान थी। अजीज मिस्र ने ये कीमत देकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने घर ले आया। उसने अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि यूसुफ को इज्जत के साथ रखो, इनके लिए साफ सुथरा कमरा तैयार करो, अच्छे कपड़े और उम्दा खाना दो, शायद ये लड़का हमारे लिए बरकत का जरिया बने। किसका जरिया बने? अजीज मिस्र के अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत की और उन्हें अपने बच्चों की तरह रखा। किसकी तरह रखा?
बच्चों
आज का यूनिट हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा,
स्कूल हो तो ऐसा।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट स्टार्ट हो चुका है। इस यूनिट का क्या नाम है?
इस्लामिया।
दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां।
पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गैर मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को इस्लाम की वजह से कितनी तकलीफें देते थे। आज हम पढ़ेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को किस तरह महफूज जगह भेजा ताकि वो सुकून से अल्लाह पाक की इबादत कर सकें। बच्चों, जब मक्का के गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, उन्हें तकलीफें दी और उनके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हबशे की तरफ जाने का हुक्म फरमाया। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब शरीफ के महीने में 11 मर्द और 4 औरतें अल्लाह पाक के प्यारे दीन के लिए अपना घर छोड़कर हबशा के लिए रवाना हुए। जब गैर मुस्लिमों को ये खबर मिली तो वो उनको पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन मुसलमान कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे। गैर मुस्लिम मायूस होकर वापस लौट गए। ये महाजरीन हबशा पहुंचकर अमन सुकून के साथ अल्लाह पाक की इबादत में लग गए। कुछ दिनों बाद ये खबर फैली कि मक्का के गैर मुस्लिम सब मुसलमान हो गए। ये सुनकर हबशा में रहने वाले कुछ लोग वापस मक्का आ गए, लेकिन वहां आकर पता चला ये खबर झूठी थी। कुछ लोग फिर हबशा चले गए और कुछ लोग मक्का में छुप कर रहने लगे, मगर गैर मुस्लिमों ने उन्हें ढूंढ निकाला और पहले से ज्यादा तकलीफें दी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि वो दोबारा हबशा हिजरत कर जाएं। इस बार पिछले महाजरीन के साथ और भी मुसलमानों ने हिजरत की और वो सब हबशा जाकर अमन के साथ रहने लगे। लेकिन बच्चों, मक्का के गैर मुस्लिम कहां बर्दाश्त कर सकते थे कि मुसलमान कहीं सुकून से रहे। उन्होंने कुछ तोहफे लेकर दो लोगों को हबशा के बादशाह नजाशी के पास भेजा। वो नजाशी के दरबार में पहुंचे और तोहफे पेश किए और बादशाह से कहा, हमारे कुछ लोग अपने शहर से भागकर आपके मुल्क में आ गए हैं। ये लोग हमारे दीन को छोड़कर एक नया दीन लाए हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दें। नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे, मुसलमानों की तरफ से जवाब देने के लिए दरबार के आदाब के मुताबिक खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने बादशाह को सजदा नहीं किया, सिर्फ सलाम किया। दरबारियों ने कहा, तुमने बादशाह को सजदा क्यों नहीं किया? हजरत जाफर रदियल्लाहु तआला ने जवाब दिया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने से मना किया है, इसीलिए हम बादशाह को सजदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्लाह पाक के आगे झुकते हैं। बच्चों, हमें इससे क्या सबक मिला? हमें दीन के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, मुश्किल वक्त में सब्र और तहम्मुल करना चाहिए, मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत रखनी चाहिए और हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह अगली यूनिट में मजीद बातें सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम।